আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা খাতামিন নাবিয়্যিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। খানে কি পাঁচ সুন্নতে, ইয়ে মজমুন ফেজানে সুন্নত সফা 220 তা 242 সে লিয়া গয়া হে। দুআ আত্তার ইয়া রব্বুল মুস্তাফা জো কোই 17 সফহাত কা রিসালা, খানে কি পাঁচ সুন্নতে পড় ইয়া সুন লে, উসে খানে পিনে সোনে জাগনে বগেরা হর কাম সুন্নত কে মুতাবিক করনে কি তৌফিক দে, আর উসকো মরতে ওয়াক্ত আপনে প্যারে প্যারে আখরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কি জিয়ারত নসীব ফরমা কর বেহিসাব বখশ দে। আমিন বিজাহি খাতামিন নবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। দুরুদ শরীফ কি ফজিলত, ফরমানে আখরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, জো শখস সুবহ শাম মুঝ পর 10-10 বার দুরুদ শরীফ পড়েগা, বরোজে কিয়ামত মেরি শফাআত উসে পৌঁছ কর রহেগি। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। বেঠনে কি এক সুন্নত, খানা খানে কে লিয়ে বেঠনে কি এক সুন্নত ইয়ে হে কি সিধা গুঠনা খড়া করেন আর উল্টা পাঁও বিছা কর উস পর বেঠ যায়, জবকি এক অর ভি সুন্নত বেঠনে কি হে। চুনাচে হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমাতে হ্যায় কি মানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কো ছুয়ারে তনাউল ফরমাতে দেখা আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম জমিন সে লগ কর ইস তরহ বেঠে থে কি দোনো ঘুটনে খড়ে থে। ঘুটনে খড়ে করকে খানে কে ফওয়াইদ, প্যারে প্যারে ইসলামী ভাইও, দোনো ঘুটনে খড়ে করকে জমিন সে সুরিন লগা কর খানে সে বকদরে জরুরত হি খানা মেদে মে জাতা হে, জিসকে সবব অমরাজ সে হিফাজত হোতি হে। এক পাঁও খড়া করকে আর দূসরা বিছা কর খানে কি সুন্নত কি বরকত সে তিল্লি কি বিমারিও সে বচাও হোতা হে আর রানো কে পঠে মজবুত হোতে হ্যায়। কহতে হ্যায় চার জানো ইয়ানি চোকড়ি মার কর খানে কে আদি কা মোটাপা বড়তা আর তোন্দ নিকল আতি হ্যায়। নিজ চার জানো খানে সে দর্দ কুলঞ্জ ইয়ানি বড়ি আঁত কা দর্দ হো জানে কা ভি খতরা রহতা হ্যায়। এক আদমি কা কহনা হে মানে এক ইংরেজ কো দেখা কি দোনো ঘুটনে খড়ে করকে জমিন পর সুরিন লগা কর খা রহা থা, মানে হেরত সে উসকা সবব পুছা তো ফোরন আপনে নিকলে হুয়ে পেট পর হাত মার কর কহনে লগা ইসকো অন্দর করনে কে লিয়ে। খানা আর পর্দে মে পর্দা, খানে মে সুন্নত কে মুতাবিক বেঠনে ওয়ালে ইসলামি ভাই আর ইসলামী বহন কো চাইয়ে কি ঘুটনো সে লেকর পাঁও কে পঞ্জো তক চাদর সে আচ্ছি তরে পর্দে মে পর্দা কর লে। আগর কুর্তে কা দামন বড়া হো তো উসি কো আচ্ছি তরে ফেলা কর পর্দে মে পর্দা কর লিজিয়ে। পর্দে মে পর্দা না করনে সে সামনে বেঠে হুয়ে লোগোঁ কে লিয়ে বাজ ওকাত আঁখো কি হিফাজত বহুত মুশকিল হো জাতি হে। আকেলে মে ভি পর্দে মে পর্দা করনা চাইয়ে কি আল্লাহ পাক সে হায়া করনে কা সবসে জ্যাদা হক হে। আল্লাহ পাক সে হায়া কর রহা হুঁ ইয়ে নিয়ত কর লেঙ্গে তো ইনশা আল্লাহুল করিম ইসকা কসীর সওয়াব পায়েঙ্গে। আর দূসরো কি মৌজুদগি মে পর্দে মে পর্দা করতে ওয়াক্ত ইয়ে নিয়ত ভি কি যা সকতি হে কি মুসলমানো কে লিয়ে বদনিগাহি কা সবব দূর কর রহা হুঁ। হর কাম মে জিস কদর হো সকে আচ্ছি আচ্ছি নিয়তে কর লেনি চাহিয়ে, জিতনি আচ্ছি নিয়ত জ্যাদা হোঙ্গি উসি কদর সওয়াব ভি জ্যাদা মিলেগা। আল্লাহ পাক কে প্যারে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কা ফরমানে আযীম শান হে, মুসলমান কি নিয়ত উসকে আমল সে বেহতর হে। টেবল কুরসি পর খানা, আলা হযরত মৌলানা শাহ ইমাম আহমদ রজা খান রহমতুল্লাহি আলাইহ ফরমাতে হ্যায় জুতা পহনে খানা আগর ইস উজর সে হো কি জমিন পর বেঠা হে আর ফর্শ ইয়ানি দরি বগেরা নহীঁ, জব তো সিরফ এক সুন্নত মুস্তাহাব্বা কা তর্ক হে, ইসকে লিয়ে বেহতর ইয়হি থা কি জুতা উতার লেতা আর মেজ পর খানা রক্ষা হুয়া হে আর ইয়ে কুরসি পর জুতা পহনে তো ওয়াজ-এ-খাস নসারা কি হে, इससे दूर भागे। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जो किसी कौम से मुशाबहत पैदा करे वो इन्हीं में से है। शादी खाना बर्बादी के असबाब। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अफसोस सद करोड़ अफसोस, आजकल हमारे यहाँ तकरीबन हर मामला में यहूदो नसारा की नकल की जाती है। शादी यकीनन मीठी मीठी सुन्नत है, मगर अफसोस कि इस अजीम सुन्नत की अदायगी में दीगर मुकद्दस सुन्नतों बल्कि मुतअद्दद फराइज तक का खून कर दिया जाता है। गाने बाजे, फिल्में ड्रामे, वैरायटी प्रोग्राम और ना जाने क्या क्या धमा चौकड़ियाँ होती हैं। घर की औरतें खूब ढोल पीटती हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला रक्स भी करती हैं। आखिर कौन सा हराम काम ऐसा है जो आजकल हमारे यहाँ शादियों में नहीं किया जाता। मादल्ला दूल्हा शादी से कबल ही अपनी मंगेतर को अपने हाथ से अंगूठी पहनाता है, साथ सैर व तफरी होती है, शादी में बेहयाई से भरपूर तकारीब मुनअक़िद होती हैं, औरतों में अजनबी मर्द मूवीज़ बनाते हैं, खाने की दावत भी तो मेज़ कुर्सी पर, बल्कि अब तो ज़्यादा तरक्की होने लगी है कि कुर्सियाँ भी हटा ली गई हैं, सिर्फ मेज़ पर अनवाओ अकसाम के खाने चुन दिए जाते हैं और लोग चलते फिरते मेज़ के गिर्द घूमते हुए खाते पीते हैं। हालांकि ऐसा करना हरगिज़ सुन्नत नहीं। अब गौर फरमाइए कि आज शादी खाना आबादी होती किसकी है। शादी के बाद उमूमन हर कोई खाना बर्बादी का शिकार नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी जैसी पाकीज़ा और मीठी मीठी सुन्नत में गैर शरई रसूमात की दुनिया ही में सज़ा दी जा रही हो। अगर अल्लाह पाक गज़बनाक हुआ तो आखिरत की सज़ा किस कदर होलनाक होगी। अल्लाह करीम हमें फिरंगी तहजीब व फैशन से नजात अता फरमा कर सुन्नतों का आईनादार बनाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हर दम वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह बरकतें और सादतें ही सादतें पाएंगे। चुनाचे वो दावत इस्लामी में कैसे आए। एक इस्लामी भाई 2002 सने ईस्वी में बुरे दोस्तों की सोहबत के बाइस गुंडा गैंग में शामिल हो गए। लोगों को मारना पीटना और गालियां बकना उनका मामूल था। जानबूझकर झगड़े मोल लेते, जो नया फैशन आता सबसे पहले वो अपनाते। दिन में कई बार कपड़े तब्दील करते, सिवाय जीन्स के दूसरी पैंट ना पहनते। आवारा दोस्तों के साथ घूम फिर कर रात गए घर लौटते और दिन चढ़े तक सोते रहते। वाली साहब का इंतकाल हो चुका था। बेवा माँ समझाती तो मादल्ला जबान दराजी करते थे। एक मरतबा दावत इस्लामी के किसी बा इमामा इस्लामी भाई ने उनसे मुलाकात पर एक रिसाला जिन्नात का बादशाह तोहफे में दिया। उन्होंने पढ़ा तो अच्छा लगा। रमजान मुबारक में एक दिन किसी मस्जिद में उन्हें जाने की सआदत मिली तो इत्तेफाक से एक सब्ज सब्ज इमामे और सफ़ेद लिबास में मलबूस संजीदा नौजवान पर नज़र पड़ी। मालूम हुआ कि ये यहाँ मोतकिफ हैं। उस इस्लामी भाई ने दर्स फैदान सुन्नत दिया तो वो भी बैठ गए। बाद दर्स उन्होंने इन पर इनफरादी कोशिश करते हुए दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकतें बताईं। इस्लामी भाई का लिबास इस कदर सादा था कि बाज़ जगह पैवन तक लगे हुए थे। जब उनके लिए घर से खाना आया तो वो भी बिल्कुल सादा था। ये उनकी सादगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उनसे मुलाकात के लिए आने जाने लगे। इत्तेफाक से ईदुल फितर के बाद उन इस्लामी भाई का निकाह था। ये बेचारे गरीब व तंग दस्त थे, मगर हैरत की बात ये थी कि उन्होंने इस बात का इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया और ना ही किसी किस्म की माली इमदाद के लिए सवाल किया। वो और ज़्यादा मुतासिर हुए कि माशा अल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल कितना प्यारा है और उसके वाबस्तगान किस कदर सादा और खुददार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की मोहब्बत उनके दिल में घर करती चली गई, हत्ता कि उन्होंने आशिकान रसूल के हमरा 8 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र किया। उनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई, कल्ब में मदनी इनकलाब बरपा हो गया और उन्होंने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपनी ज़ात को दावत इस्लामी के हवाले कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन पर वो मदनी रंग चढ़ा कि दादम तहरीर इलाकाई मुशावरत के खादिम यानी निगरान की हैसियत से अपने इलाके में दावत इस्लामी के दीनी कामों की धूमें मचा रहे हैं। सादगी चाहिए, आजजी चाहिए, आपको गर चलें काफिले में चलो, खूब खुददारियाँ और खुश अखलाकियाँ आइए सीख लें काफिले में चलो, आशिकान रसूल लाए सुन्नत के फूल, आओ लेने चलें काफिले में चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा अपने दीन की तबलीग के लिए इस्त्री किया हुआ भड़कीला लिबास और कलफदार खूबसूरत इमामा ही ज़रूरी नहीं, पैवंदार लिबास सादा इमामा शरीफ से भी काम चलता है। चलता ही नहीं, दौड़ता है, बल्कि दौड़ता ही नहीं, इसको तो मदनी पर लग जाते हैं और सुए मदीना मुनव्वरा उड़ने लगता है। सादा लिबास के तो क्या कहने हैं, सादा लिबास की फजीलत। कुफार की नक्काली में फैशन करने वाले, हर वक्त बने संवरे रहने वाले, नित नए डिज़ाइन और तरह तरह की तराश खराश वाले लिबास पहनने वाले अगर सादगी अपना ले तो दोनों जहां में बेड़ा पार हो। चुनाचे सादा लिबास पहनने की फजीलत सुनिए और झूमिए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बावजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाजो यानी आजजी के तौर पर छोड़ देगा, अल्लाह पाक उसको करामत का हुल्ला यानी जन्नती लिबास पहनाएगा। फैशन परस्तो खबरदार। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, झूम जाओ, पास दौलत है, उम्दा लिबास पहनने की ताकत है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा की खातिर आजजी इख्तियार करते हुए सादा लिबास पहनने वाला जन्नती लिबास पाएगा और जाहिर है जो जन्नती लिबास पाएगा वो यकीनी तौर पर जन्नत में भी जाएगा। लोगों पर रोब डालने, अमीराना ठाट पालने और महज अपने नफ्स के लिए लोगों को मुतासिर करने की खातिर नुमाया फैंसी और भड़कीले लिबास पहनने वाले सुने और कुढ़ें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिसने शोहरत का लिबास पहना क़यामत के दिन अल्लाह उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। लिबासे शोहरत किसे कहते हैं? हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि अलैहि इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी ऐसा लिबास पहने के लोग अमीर यानी मालदार जाने, या ऐसा लिबास पहने के जिससे लोग नेक परहेजगार समझें। ये दोनों किस्म के लिबास शोहरत के लिबास है। अलगरस जिस लिबास में नीयत ये हो कि लोग उसकी इज्जत करें, ये उसका लिबास शोहरत है। साहिब मिर्का रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मस्खरा पन का लिबास पहनना जिससे लोग हंसें, ये भी लिबास शोहरत है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई सख्त इम्तिहान है। लिबास पहनने में बहुत गौर करने और दिखावे से बचने की सख्त ज़रूरत है। नीज जो लोगों को अपनी सादगी का मोतकिद बनाने के लिए सादा लिबास और इमामा और चादर वगैरह अपनाता है, वो रियाकार और जहन्नम का हकदार है। हम अल्लाह करीम से इखलास की भीख मांगते हैं, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही, रियाकारियों से सियाहकारियों से बचा या इलाही, बचा या इलाही। टिप टॉप کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ فیشن کی خاطر روز روز نئے لباس پہننے والے، ذرا فیشن تبدیل ہوا یا لباس تھوڑا پرانا ہوا یا کہیں سے معمولی سا پھٹا تو پیوند کاری کر کے اس کو پہننے میں آر یعنی عیب محسوس کرنے والے، اس روایت کو بار بار سنیں۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے؟ بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے۔ اس روایت کے تحت حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق یعنی عمدہ عادات سے ہے۔ پیوند دار لباس کی فضیلت، حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی، آپ اپنی قمیص میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا، اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کھانا کیسا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے اور کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے کے طبی نقصانات، اٹلی کے ایک ماہر اغذیہ یعنی غذاؤں کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے تلی اور دل کی بیماریاں نیز نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنوں تک کو پہچان نہیں پاتا۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں پئیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیئے تو سیدھے ہاتھ سے پیئے۔ شیطان کا طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پیئے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے، سیدھے ہی ہاتھ سے لیں اور دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیئے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ ہر کام میں الٹا ہاتھ کیوں؟ پیارے پیارے اسلام بھائیو، افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، حدیث مبارک میں ہے کہ آدمی کی رگوں میں شیطان خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا، اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں۔ کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے، لہذا پانی الٹے ہی ہاتھ سے پی ڈالتے ہیں۔ چائے پیتے وقت کپ سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس الٹے میں اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دیتے ہیں۔ حیات محدث اعظم صفحہ 374 پر ہے، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق یعنی دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہوش کیجئے، और देखिए हमारे प्यारे प्यारे आका मक्के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उल्टे हाथ से खाना पीना किस कदर नापसंद है। चुनाचे तेरा सीधा हाथ कभी ना उठे। हज़रत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह अन से मरवी है कि एक आदमी ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उल्टे हाथ से खाना खाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ। उसने कहा मैं सीधे हाथ से नहीं खा सकता। गैब जानने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये तकब्बुर से बोल रहा है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लस्ततात यानी तुझे इस्तितात ना हो, मतलब ये कि तेरा सीधा हाथ कभी ना उठे। उसने तकब्बुर की वजह से सीधे हाथ से खाना खाने से इनकार किया था, लिहाजा फिर उसका सीधा हाथ कभी मुंह की तरफ ना उठ सका, यानी इसका सीधा हाथ बेकार हो गया। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, तेरा चेहरा बिगड़ जाए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान सदाकत निशान की ये शान है कि जो कुछ फरमाते वो हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा तो बहुत अजीम है, ग़ुलामों का हाल मुलाहजा हो। चुनाचे एक औरत मशहूर सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन को झांका करती थी। अब रदी अल्लाह अन ने बारहा उसको मना किया मगर वो बाज ना आई। एक दिन उसने जब हसब मामूल झांका तो आप रदी अल्लाह अन की ज़बान करामत निशान से ये अल्फाज निकले शाह वजह की यानी तेरा चेहरा बिगड़ जाए। बस उसी वक्त उसका चेहरा गुद्दी की तरफ फिर गया। महफूज शाह रख ना सदा बे अदबों से और मुझसे भी सरजद न कभी बे अदबी हो। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन की ज़बान कबूलियत निशान की ये तासीर दरअसल मेहर मुनीर महबूब रब कदीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का समर था, जैसा कि जामे तिरमिज़ी वगैरह में है। प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब्बुल उला में दुआ की अल्लाहुम्मा इस्तजिब सादन इदा दआक यानी या अल्लाह जब भी साद तुझसे दुआ करे तो कबूल फरमा लिया कर। मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम फरमाते हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाहु अन जब भी दुआ करते कबूल हो जाती। इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सहाबे किराम अली रिदवान की भी बड़ी शान है। गुलामाने सहाबा यानी औलिया रहमतुल्लाहि अलैहिम भी बड़ी अजमतों के मालिक होते हैं। चुनाचे या अल्लाह सबाही को अंधा कर दे। ज़बरदस्त आलिम व मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाहि अलैह 1,00,000 हदीसों के हाफिज थे। मिस्र के हाकिम उब्बाद बिन मुहम्मद ने उन्हें काजी बनाना चाहा तो ओहदा कज़ा से बचने के लिए कहीं रूपोश हो गए। एक हासिब सबाही ने झूठी चुगली खाते हुए हाकिम से कहा अब्दुल्ला बिन वहब ने खुद मुझसे काजी बनने की हिर्स जाहिर की थी मगर अब आपकी कसदन नाफरमानी करते हुए गायब हो गया है। हाकिम ने गुस्से में आकर आप रहमतुल्लाहि अलैह के मकान आली शान को मुनहदिम करवा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जलाल में आकर बारगाह रब्बे जुल जलाल में अर्ज कर दी या इलाही सबाही को अंधा कर दे। चुनाचे 8वें दिन वो सबाही अंधा हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाहि अलैह पर खौफ खुदा का गलबा रहता था। एक रोज जिक्र क़यामत सुनकर दहशत तारी हो गई और बेहोश हो गए। होश में आने के बाद सिर्फ चंद रोज जिंदा रहे और उस दौरान कुछ भी ना बोले। 197 हिजरी में वफात पाई। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। औलिया का जो कोई हो बेअदब, नाजिल उस पे होता है कहर व गज़ब। या रब्बे मुस्तफ़ा, हमें अपने प्यारे हबीब शाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम अलीम रिदवान और औलिया इज़ाम रहमतुल्लाहि अलैहिम का सच्चा अदब नसीब फरमा। उनकी बेअदबी और उनके बेअदबों के शर से सदा महफूज रख और अपने प्यारे हबीब का सच्चा दीवाना बना। आमीन बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। या रब, मैं तेरे खौफ से रोता रहूं हरदम, दीवाना शहनशाह मदीना का बना दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। साहिब मज़ार की इनफरादी कोशिश। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दिनी माहौल में बुज़ुर्गों का बहुत अदब किया जाता है, बल्कि सच्ची बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत से दावत इस्लामी फैज़ान औलिया ही की बदौलत चल रही है। चुनाचे आशिकान रसूल का एक मदनी काफिला सुन्नतों की बहारें लुटाता हुआ एक मकाम अनवार शरीफ वारिद हुआ। वहाँ से हाथों हाथ चार इस्लामी भाई तीन दिन के लिए मदनी काफिले में सफ़र के लिए आशिकान रसूल के साथ शरीक हुए। उन चारों में अनवार शरीफ के साहिब मज़ार बुजुर्ग रहमतुल्लाहि अलैह के खानवादे के एक फर्जंद भी थे। मदनी काफिला नेकी की दावत की धूमें मचाता हुआ एक दूसरे इलाके में जा पहुंचा। जब अनवार शरीफ वालों के तीन दिन मुकम्मल हो गए तो साहिब मज़ार रहमतुल्लाहि अलैह के रिश्तेदार ने कहा, मैं तो वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज रात मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाही अलैह को ख्वाब में देखा, फरमा रहे हैं, बेटा पलट कर घर ना जाना, मदनी काफले वालों के साथ मजीद आगे सफर जारी रखना। साहिब मज़ार रहमतुल्लाही अलैह की इनफरादी कोशिश का ये वाकया सुनकर मदनी काफले में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके हौसलों को मदीने के 12 चांद लग गए और अनवार शरीफ से आए हुए चारों इस्लामी भाई हाथों हाथ मदनी काफले में मजीद आगे सफर पर चल पड़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देते हैं फैज आम औलियाए किराम, लूटने सब चले काफिले में चलो, औलिया का करम तुम ये हो लाजरम, मिलके सब चल पड़े काफिले में चलो। ख्वाब के जरिए घोड़ी का तोहफा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी वलीयुल्लाह का बाद वफात ख्वाब में रहनुमाई करना कोई अचंभे की बात नहीं। अल्लाह के नेक बंदे बाअताए रब्बुल उला बहुत कुछ कर सकते हैं। चुनाचे ख्वाजा अमीर खुर्द किरमानी रहमतुल्लाही अलैह लिखते हैं, सुल्तानुल मशायख हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि गियासपुर के क़याम से पहले मैं एक कोस यानी तकरीबन 3 किलोमीटर दूर कैलू खरी की मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने जाया करता था। एक बार इसी तरह नमाज जुमा के लिए पैदल जा रहा था, गर्म हवाएं चल रही थीं और मैं रोज़े से था। मुझे चक्कर आने लगे और मैं एक दुकान पर बैठ गया। मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि अगर मेरे पास सवारी होती तो सहूलत रहती। बाद में शेख सादी का ये शेर मेरी जबां पर आया, माँ कदम अज सर कुनीम दर तलबे दोस्तां, राह बजाए बुर्द हर के बा अकदाम रफ्त। हम दोस्तों की तलब में सर को पाँव बनाकर चलते हैं, क्योंकि जो कोई इस राह में कदमों से चलता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने दिल में आने वाली सवारी के ख्याल से तौबा की। इस वाक़े को 3 रोज गुजरे थे कि खलीफा मलिक यार परां मेरे लिए घोड़ी लेकर आए और कहने लगे, मैं मुसलसल 3 रातों से ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे शेख मुझसे फरमा रहे हैं फलां साहिब को घोड़ी दे आओ, लिहाजा घोड़ी हाजिर है, कबूल फरमा लीजिए। मैंने कहा, बेशक आपके शेख ने आपसे फरमाया होगा, लेकिन जब तक मेरे शेख मुझसे नहीं फरमाएंगे मैं ये घोड़ी नहीं लूँगा। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पीर मुर्शिद حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ ملک یار پراں کی دل جوئی کے لیے وہ گھوڑی قبول کر لو۔ دوسرے روز وہ گھوڑی لے کر آیا تو میں نے اسے عطیہ خداوندی سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صرف اپنی جانب سے کھائیے۔ ایک برتن میں جب ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو اپنی طرف سے کھانا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ یہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے وہ فرزند تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سابقہ شوہر سے تھے۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے، بیچ میں سے مت کھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول عظیم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھانا کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ آپ کہیں بیچ سے تو کھانا نہیں کھاتے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ اس سنت پر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ میرا بارہا کا مشاہدہ ہے کہ با عمل نظر آنے والوں کی بھی اکثریت اس سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے۔ جس کو دیکھو وہ کھانے کی رکابی یا سالن کے برتن وغیرہ کے بیچ ہی سے آغاز کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ برکت سے محروم کرنے کے لیے شیطان ہاتھ پکڑ کر بیچ میں ڈال دیتا ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مسلمان بھلائیوں سے محروم رہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کے برتن کے بیچ میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیچ سے کھانا حرص کی علامت ہے، حریص رحمت الہی سے محروم ہے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھانے کے وقت بھی رحمت باری کا نزول ہوتا ہے، خاص کر جب کہ سنت کی نیت سے کھایا جائے۔ دوسروں کو شرمندگی سے بچائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب دسترخوان لگے تو ہر شخص اپنے قریب سے کھائے اور اپنے ساتھ کھانے والوں کے آگے سے نہ کھائے اور رکابی کے درمیان سے نہ کھائے، کیونکہ برکت اسی طرف سے آتی ہے، اور کوئی بھی دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ روکے جب تک سب لوگ اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اگرچہ سیر ہو چکا ہو اور لوگوں کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ اس کا رک جانا باقی لوگوں کی شرمندگی کا باعث ہوگا اور وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، حالانکہ شاید انہیں ابھی اور کھانے کی حاجت ہو۔ بیچ میں برکت کی وضاحت۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برتن کے کناروں سے اپنے اپنے آگے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ، کہ برتن کے بیچ میں برکت اترتی ہے، وہاں سے کناروں تک پہنچتی ہے۔ اگر تم نے بیچ میں سے کھانا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں برکت آنا بند ہو جائے۔ غرض یہ کہ برکت اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت لینے کی جگہ کچھ اور۔ کھانے کی پانچ سنتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیش کردہ حدیث مبارک میں کھانے کی پانچ سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ون، اپنے آگے سے کھائے۔ نمبر ٹو، کوئی ساتھ کھا رہا ہو اس کے آگے سے نہ کھائے۔ نمبر تھری، رکابی کے درمیان سے نہ کھائے۔ نمبر فور، پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ افسوس، آج کل عموماً الٹا انداز ہے، یعنی پہلے کھانے والے اٹھتے ہیں، اس کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 5، دوسرے بھی کھانے میں شامل ہوں تو اس وقت تک ہاتھ نہ روکے جب تک سارے فارغ نہ ہو جائیں۔ افسوس کہ کھانے کی بیان کردہ ان سنتوں پر عمل کرنے والے اب نظر ہی نہیں آتے۔ سنتیں سیکھنے اور عوام الناس کی موجودگی میں سنتوں پر عمل کی جھجک اڑانے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور وہاں ان سنتوں کی باقاعدہ مشق کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے سنتوں پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ڈراؤنے خوابوں سے نجات، مدنی قافلوں کی برکتوں کے تو کیا کہنے۔ ایک اسلامی بھائی کو بے حد ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے۔ انہوں نے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے ڈراؤنے خواب آنے بند ہو گئے۔ انہیں خواب میں میٹھے مدینے کی زیارت ہوئی اور اب خوابوں میں کبھی اپنے آپ کو نماز میں مشغول پاتے ہیں تو کبھی تلاوت میں۔ خواب میں ڈر لگے، بوجھ دل پر لگے، خوب جلوے ملیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یا متکبرو 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ بیچ میں سے مت کھائیے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھانا کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔